आशिका इस वक्त अभिमन्यु के घर पर मौजूद थी। वो अभिमन्यु के दिए हुए काम में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे खाने पीने का भी होश नहीं था। इस बीच इशिका और अभिमन्यु उसके पास आए। आशिका का अभी भी पूरा ध्यान स्क्रीन के ऊपर था और वो काम में खोई हुई थी। इसी बीच आशिका के पास एक कॉल आया। आशिका को लगा कि वो रॉन्ग नंबर है, क्योंकि कॉल पर मौजूद आदमी उसकी बुक की गई गाड़ी को भेजने की बात कर रहा था। आशिका ने कॉल काटना चाहा, लेकिन अभिमन्यु को ये बात किसी तरह का इत्तफाक नहीं लगी। वो आशिका का मोबाइल लेकर कमरे से बाहर चला गया था और कॉल पर मौजूद शख्स से बात करने लगा था। वहीं अभिमन्यु के बाहर जाने और इस बात को इतना सीरियसली लेने पर आशिका थोड़ी हैरान थी। अब उसने काम छोड़ दिया था। आशिका ने इशिका की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, यह बस एक रॉन्ग नंबर है और मिस्टर राजवंश इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। अभिमन्यु इत्तेफाक में यकीन नहीं करता है आशिका। अगर उसे कुछ गड़बड़ लग रही है तो वो बात का पता लगा कर रहेगा, इशिका बोली। लेकिन ये किसी तरह का प्रैंक कॉल भी हो सकता है, आप तो अच्छे से जानती हैं कि इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं, आशिका ने सफाई दी। अगर प्रैंक कॉल है तब भी पता चल जाएगा, तुम शायद भूल रही हो, उसके पास तुम्हारा प्राइवेट नंबर है जो किसी के पास होना इम्पॉसिबल है। याद है ना, तुम ऐश की आईडी यूज करती हो, बहुत कम लोगों को तुम्हारा पूरा नाम पता है और इस आईडी के बारे में भी। अगर वो आईडी इस्तेमाल हुई है और उससे जुड़े कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल आया है तो तुम्हें इस बात को सहज नहीं टालना चाहिए, इशिका आशिका को समझाने लगी। पहले आशिका ने भी इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन इशिका की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसने इशिका की तरफ अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पर मुझे मिस्टर राजवंश ने बताया था कि आपको टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है, क्या आपकी याददाश्त वापस आ गई है डॉक्टर मर्चेंट? पिछली पुरानी बातें भूली हूँ, उससे पहले की नहीं, सब अच्छे से याद है और हम एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, मुझसे बेहतर तुम्हारे बारे में कौन जान सकता है, इशिका ने मुस्कुराकर कहा। आशिका ने भी उसकी बात पर हामी भरी। उतने में अभिमन्यु बात करके वापस अंदर आ गया था। उसने आशिका को उसका मोबाइल लौटा दिया था। आशिका ने तुरंत नंबरों की खोजबीन की तो उसकी डिटेल सामने आ गई थी। स्क्रीन पर मौजूद डिटेल्स देखकर आशिका के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। उसने अभिमन्यु से कहा, लेकिन ये तो कोई प्रैंक कॉल नहीं था और ये तो रजिस्टर्ड कार कंपनी का नंबर है। मैं इंडिया से वापस जाने का सोच रही थी, फिर मैं अपने लिए कार क्यों रजिस्टर करूंगी? मैं देखता हूँ, तुम अपना काम खत्म करो और उसके बाद कुछ खा लेना, हो सकता है कि हमें कहीं जाना पड़े, अभिमन्यु ने जवाब दिया। फिर उसने इशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ बाहर ले गया। अभिमन्यु ने आशिका के सामने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि बात कुछ और भी है, बस वो आशिका के सामने नहीं बताना चाहता था। कमरे से बाहर आते ही इशिका ने अभिमन्यु से पूछा, क्या हुआ, आशिका किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अभी तक तो नहीं है, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकता। इशिका, तुम्हें अभिमान याद है जिसने तुम्हें सब कुछ बताया था, अभिमन्यु बोला, जिस पर इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया था। उसकी वाइफ का नाम भी आशिका सिंघानिया है। शादी अभिमान की मर्जी से नहीं हुई थी, बल्कि उसके दोस्त की बेवकूफी की वजह से हुई थी। तुम्हें याद नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले आशिका ने कॉल करके तुम्हें बताया था कि उसे पता नहीं कैसे पर उसकी शादी किसी के साथ रजिस्टर है। मैंने उस कार कंपनी के ओनर से बात की थी और उसने बताया कि वो गाड़ी किसी अभिमान राजवंश के लिए रजिस्टर की गई थी, जो कि उसकी पत्नी ने रजिस्टर करवाई थी। जो डिटेल्स भेजी गई थी वो उनकी होने वाली पत्नी की थी। अगर अभिमान के लिए आशी ने गाड़ी रजिस्टर करवाई थी तो उसके पास आशिका की आईडी कैसे हो सकती है? अभिमन्यु के दिमाग में जो भी था वो उसने इशिका के सामने रख दिया था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है वो लड़की आशी अब तक झूठ बोल रही थी, अभिमान की असली पत्नी आशिका है और वो ये सच पहले से जानती है और उसकी आईडी तक इस्तेमाल कर रही थी उन्हें धोखा देने के लिए? इशिका को समझते देर नहीं लगी थी कि अभिमन्यु क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैंने पृथ्वी को कुछ डिटेल्स निकालने के लिए कहा है, जो भी करना है जल्दी करना होगा क्योंकि आज शाम अभिमान उस लड़की से ऑफिशियली शादी करने जा रहा है। अगर हम आशिका को वहां लेकर पहुंच जाएं तो, इशिका जल्दी से बोली। नहीं, बिना सबूत हम नहीं जा सकते हैं, ऊपर से आशिका अब तक अभिमान को जानती नहीं है, मैंने पृथ्वी को अभिमान का मैरिज रजिस्ट्रेशन निकलवाकर उसकी जाँच के लिए भेज दिया है। ऐसा करो, आशिका से उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आओ, उसके बाद ही हम श्योर हो सकते हैं। और प्लीज अभी इस बारे में आशिका को कुछ मत बताना, वो अभिमान को जानती नहीं है, वो पैनिक कर जाएगी, अभिमन्यु बोला। वो अब तक इस बात से अनजान था कि आशिका और अभिमान एक दूसरे के लिए अनजान नहीं है, बल्कि आशिका अभिमान के लिए काम करती थी। लेकिन अगर आशिका सच में अभिमान की वाइफ है तो हमें उसके सामने सच लाना चाहिए, अभिमन्यु, वो लड़की इस तरह कैसे आशिका की आईडी के नाम पर धोखा दे सकती है, ये क्राइम है, इशिका हल्के गुस्से में बोली। डोंट वरी, बाकी की तैयारी सब मैं कर दूंगा, तुम फिलहाल आशिका को कैसे भी करके कन्विंस करो ताकि वो मुंबई जाने के लिए मान जाए। रास्ते में हम उसे सब बता देंगे, अभिमन्यु ने इशिका को समझाया। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और आशिका के पास आ गई थी। वहीं अभिमन्यु अब अभिमान से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। अभिमान अपनी शादी से काफी ज्यादा दुखी था, उसने अपना नंबर बंद कर दिया था। कुछ ही देर में उसकी आशी से शादी होने वाली थी और वो मुंह लटकाए अपने कमरे में राघव के साथ बैठा था। अब तक लगता था कि मैं उस लड़की से किसी न किसी तरीके से बच जाऊंगा, लेकिन अब मुझे दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या सच में मुझे उम्र भर उसे झेलना पड़ेगा राघव? अभिमान ने सिर पकड़ कर कहा। उसकी निगाहें राघव पर थी। आई होप इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता। अभी के लिए तुम्हें आशी से शादी करनी होगी, चाहे बाद में तुम उससे तलाक लेकर पीछा छुड़ा लेना, राघव बोला। वो अभिमान को तैयार होने के लिए मना रहा था, लेकिन वो तो अभी भी ट्राउजर और टी शर्ट में बैठा हुआ था। पिछले 5 सालों में पीछा नहीं छुड़ा पाया, अब क्या खाक पीछा छोड़ेगी? सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे मिस्टर राजवंश पर आ रहा है। मेरी वजह से मॉम को सहना पड़ रहा है, बस यही मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने सोचा था कि एक दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मॉम को इन सब से बाहर निकाल लूंगा, लेकिन आज भी हम उस आकाश राजवंश के जाल में फंसे हुए हैं, अभिमान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। राघव और अभिमान आपस में बात कर रहे थे तभी अभिमान के कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। अभिमान जल्दी से खड़ा हुआ और सख्त आवाज में बोला, फिलहाल मुझे किसी से बात नहीं करनी है, प्लीज। किसी और में और तुम्हारी माँ में फर्क है अभिमान, दरवाजा खोलो, बाहर से निशा की आवाज आई। अभिमान के कमरे में आने से पहले वो इधर उधर देख रही थी, ऐसा लग रहा था कि वो वहां पर छुप कर आई हो। अभिमान ने जल्दी से दरवाजा खोला तो निशा अंदर आ गई थी। निशा के गले पर उंगलियों के निशान थे और माथे पर हल्की चोट की खरोचे आई हुई थी। उसे देखकर अभिमान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। वो अच्छे से जानता था कि ये किसने किया होगा। अभिमान, तुम मेरी चिंता करना छोड़ो, वो इंसान कभी नहीं बदल सकता है। तुम राघव के साथ यहाँ से निकल जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। बेटा, तुम्हें उस लड़की से शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, निशा ने भारी आवाज में कहा। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि अभिमान का उतरा हुआ मायूस चेहरा उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
अभिमान, जो अब तक इस उम्मीद में था कि कोई उनकी मदद करने के लिए आ जाएगा, निशा की हालत देखने के बाद उसकी सारी उम्मीदें टूट गई थीं। आप अपने कमरे में जाइए और तैयार हो जाइए, मैं बस थोड़ी देर में बाहर आ रहा हूँ। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। बोल दीजिए उन्हें कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अभिमान ने खुद को मजबूत करके कहा। लेकिन बेटा, निशा ने अभिमान को रोकना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही अभिमान उसके गले लग गया था। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको हमेशा खुशी दूंगा, और आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए मेरी खुद की खुशी भी नहीं है मॉम। आपको इस तरह रोता हुआ तकलीफ में देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है ये आप अच्छे से समझती हैं। शायद हमें अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इतने सालों से लड़ रहे हैं, अब तो मैं भी थक गया हूँ, अभिमान मायूसी से बोला। वो निशा से अलग हो गया था। अभिमान शादी की किसी भी रस्म में ठीक से हिस्सा नहीं ले रहा था और आज तो वो अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकला था। हालांकि शादी में ज्यादा गेस्ट को इनवाइट नहीं किया गया था, लेकिन अभिमान की हरकतें देखकर सबको यही लग रहा था कि वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे में आकाश के पास अभिमान को ब्लैकमेल करने के लिए एकमात्र सहारा निशा बची थी। आकाश ने अपनी जोर जबरदस्ती निशा पर आजमाई, पर फिर भी निशा की पूरी कोशिश यही थी कि वो अभिमान को यहाँ से भेज सके। अभिमान अच्छे से जानता था कि अगर वो शादी छोड़कर चला गया तो उसके बाद आकाश निशा का जीना हराम कर देगा और उसे तकलीफ देगा। अभिमान ने जैसे तैसे समझा बुझाकर निशा को कमरे से बाहर भेज दिया था। राघव भी निशा के साथ ही था। उनके जाने के बाद अभिमान शादी के लिए तैयार होने के लिए चला गया था। राजवंश विला में कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वहाँ किसी की शादी हो रही हो। अगर आकाश नहीं होता तो उन्हें ये दिखावा करने की भी ज़रूरत नहीं थी। कुछ ही देर में अभिमान तैयार होकर नीचे पहुंचा। उसने पेस्टल पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। जब शादी से पहले की कुछ रस्मों के लिए निशा और उसकी बड़ी मॉम गौतमी आगे आईं, तो अभिमान ने हाथ के इशारे से उन्हें वहीं पर रोक दिया था। मुझे ये सब फॉर्मेलिटी करना पसंद नहीं है, आप सबको पता है मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, तो ये दिखावा मत कीजिए। मैं अपनी गाड़ी में राघव के साथ सिंघानिया मैंशन पहुँच जाऊँगा, अभिमान ने बेरुखी से कहा और सब कुछ वहीं पर छोड़कर राघव के साथ गाड़ी में बैठने लगा था। इस बार आकाश ने भी उसे नहीं रोका। वहीं दूसरी तरफ आशी भी शादी के लिए तैयार हो चुकी थी। लाल सुर्ख जोड़े में हैवी ज्वेलरी के साथ वो बिल्कुल किसी रॉयल ब्राइड की तरह लग रही थी। आशी भले ही तृप्ति को पसंद ना करती हो, लेकिन तृप्ति उसे बहुत प्यार करती थी और वो खुद को छुपाकर उस शादी में पहुँच ही गई थी। आशी को उसके वहाँ होने की भनक तक नहीं थी, लेकिन जब उसने आशी को तैयार हुआ देखा तो उसकी पलकें भीगने लगी थीं। आशी को यही लाइफ देने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। जब आशी को पता चला बारात आ गई है तो वो जल्दी से अपने कमरे की बालकनी में गई और उसने अभिमान की तरफ देखा। अभिमान के चेहरे की मायूसी उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी, लेकिन उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर आशी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कराहट थी। क्या मैं अभिमान से अकेले में बात कर सकती हूँ मानसी? आशी ने भौहें उठाकर पूछा। अब तो उसे परेशान करना बंद करो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसे चिढ़ाने के लिए उससे बात करना चाहती हो। डोंट वरी, उसे परेशान करने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, फिलहाल अपनी शादी एंजॉय करो, मानसी ने कंधा सहलाकर कहा। जवाब में आशी ने बेपरवाही से सिर गिला गया था। आशी की उम्मीद के मुताबिक उसकी ग्रैंड एंट्री हुई थी। वो शादी के मंडप में अभिमान के जस्ट सामने खड़ी थी। आशी के चेहरे की मुस्कुराहट अभिमान को चिढ़ा रही थी। एक पल के लिए उसे आशिका का ख्याल आया। अभिमान ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, अगर इस तरह जाना ही था तो तुम मेरी लाइफ में आई ही क्यों ऐश? कम से कम ये बताने का तो मौका देती कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करने लगा था। जल्द ही आशी अभिमान के पास पहुंच गई थी। सबको दिखाने के लिए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। उसने अभिमान की शेरवानी का दुपट्टा सही करते हुए मुस्कुराकर बोली, कहा था ना अभिमान राजवंश, तुम्हें मेरे साथ ही पूरी जिंदगी बितानी पड़ेगी, तुम्हारे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। अभिमान ने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कस ली थीं, तो वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु इस वक्त गाड़ी के अंदर था। वो काफी फास्ट गाड़ी ड्राइव कर रहा था। ड्राइव करते वक्त अभिमन्यु के पास कॉल आया। उसने फोन स्पीकर पर किया तो दूसरी तरफ से पृथ्वी की आवाज आई, आई एम रियली सॉरी सर, मुझे कॉल करने में टाइम लग गया, लेकिन आपका शक बिल्कुल सही है। आशिका सिंघानिया, आई मीन आशी, जिसकी शादी अभिमान से हो रही है, वो उसकी रियल वाइफ नहीं है, बल्कि रियल वाइफ वो लड़की है जिसकी आईडी आपने सुबह भेजी थी। उन दोनों का नाम एक है, शायद इस वजह से ही ये कन्फ्यूजन हुआ होगा। पृथ्वी की बात का जवाब दिए बिना ही अभिमन्यु ने कॉल कट कर दिया था। उसके चेहरे पर हल्की ना दिखने वाली स्माइल थी। तो वहीं बैक सीट पर बैठी आशिका, जो अब तक अभिमन्यु से बार बार पूछे जा रही थी कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, उसे अपने सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए थे।